हंस मछली प्याज लहसुन नहीं खाया, ये बात ठीक है, शास्त्र इत्यादि भी पढ़ने लगे, किंतु उन लोगों में थोड़ी सी एक बात ये आई, गोपियों का नाम नहीं लेना चाहिए, दशम स्कंद भागवत नहीं पढ़ना चाहिए, ये थोड़ा सा आ गया, कुछ आ गया प्रभुपाद की। इसलिए जितने भी शिष्य थे बड़े बड़े धुरंधर जी, उन लोगों ने दोनों तरफ का सामंजस्य न करके प्रभुपाद का जो विषय था उसको लिया, खंडन करो, खंडन करते जाओ, बस गीता पढ़ो, बस यही तक रखो, और श्रीमद्भागवत का दशम स्कंद को मत पढ़ो, एकादश द्वादश पढ़ो और नीचे का जितना है ये सब पढ़ो, और इसी सब का आलोचना होना चाहिए, कोई जगत में इसका अधिकारी बहुत कम है। इसलिए प्रभुपाद को अंत में कहना पड़ा कि हम केवल इसी के लिए नहीं आए, अब देख करके उनको दुख हुआ, इसलिए उन्होंने कहा नहीं, भाव 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 से तो आदमी समझता है ना, उस समय ऐसी था, लोग काम को इधर उधर में व्यस्त थे, इसलिए उनको ये सब चीजों को हटाने के लिए ये प्रचार आवश्यक था, प्लेटफॉर्म बनाने के लिए, नहीं प्लेटफॉर्म बन नहीं सकता था ये काम, इससे तो बहुत अधिक वो लोग करते थे उस समय, जैसे भक्ति विनोद ठाकुर जी के शिष्य थे क्या वो, नहीं वो जो सावरी प्रपन्नाश्रम के प्रतिष्ठा वो लोग सब थे, सब रासलीला इत्यादि का प्रचार करना और इसी का विचार अधिक करते थे, किंतु हो गया वो गड़बड़, उनमें वो गड़बड़ हो गया, वो काम भाव आ गया, और इधर में थोड़ा सा ये हो गया। अभी तभी देखो प्रभुपाद के जितने भी शिष्य हैं वो लोग चैतन्य चैतामित का तृतीय चतुर्थ अध्याय राय रामानंद का इत्यादि का नहीं करेंगे, रासलीला में कौन सा बुरा प्रसंग है, कुछ है, हम तो देखते उसमें कोई अश्लील नाम की कोई चीज ही नहीं है उसमें रासलीला, और सब शंकाओं का समाधान करके अच्छी तरह से बतलाया गया, किंतु यदि आधार ठीक नहीं रहेगा तो वो गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए प्रभुपाद ने उन सबका खंडन कर दिया। उस समय में एकादश द्वादश, हमारे गुरु जी एकादश द्वादश के केवल द्वितीय, एकादश के द्वितीय अध्याय को केवल पाठ, और वही एक श्लोक जहां दी जाए गोविंद भज गुप्तायन द्वारा बस एक श्लोक, और तरह तरह से व्याख्या करें, और उसमें मायावाद का खंडन आएगा, राजिया सखी देखी ये सब खंडन आएगा, और अधिक से अधिक श्रवणन के कारण प्रहलाद महाराज, और कुछ नहीं आएगा। तो इस तरह से प्रभुपाद ने इन विचारों का आधार प्रदान किया, प्लेटफॉर्म बनाया, जिससे दोनों को सामंजस्य करके जिस प्रकार से विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी हैं, भक्ति विनोद ठाकुर जी हैं, रूप गोस्वामी जी हैं, उन लोगों ने कुछ पक्ष की सभी, और उनके विचारों को बांधने के बांध के समान जो दूसरे बुरे विचार न मिले, इसलिए इसकी विजय हो, इसलिए प्रभुपाद जी ने ऐसा विचार। इस तरह से प्रभुपाद जी ने ये जो दैव वर्णाश्रम की बात हमारे रसानंद जी और हमारे सुबल सखा ब्रह्मचारी जी ने बताया, ये प्रभुपाद का ये वैशिष्ट्य कहा जाता है, किंतु ये वैशिष्ट्य क्या है, ये वैशिष्ट्य भी अन्नाभिलाषिता शून्य या ज्ञान कर्म उसके अंतर्गत का ये भाव प्लेटफॉर्म को तैयार कर, इसीलिए कहा कि इसके लिए हम नहीं आए थे, किंतु ये नहीं बनता, खेती नहीं बनेगा तो बीज कहां से आएगा, इसलिए ये भी परम आवश्यक है, इसलिए दैव वर्णाश्रम धर्म की स्थापना की, जिससे कि दैव वर्णाश्रम धर्म के मानने वाले ही शुद्ध भक्ति में प्रवेश कर सके, प्लेटफॉर्म बनाए, यदि ऐसा नहीं करते जैसे कि सालग्राम शिला, सालग्राम शिला को महिलाएं नहीं छू सकती और ब्राह्मण के अतिरिक्त तो दूसरा कोई पूजन नहीं कर सकता, ऐसा विचार प्रभुपाद ने क्या कहा, हरि भक्ति विलास का विचार लिया, जिसको भक्ति विनोद ठाकुर भी प्रचलित नहीं कर सके, सनातन गोस्वामी भी अपने जीवन काल में प्रचलित नहीं कर सके, समाज के डर से, समाज इतना भयंकर उस समय था, इसलिए हम उस समय तक भी भक्ति विनोद ठाकुर ने भी ये प्रचार नहीं कर सके जो स्त्रियां सागर ग्राम की पूजा कर सके। और भक्ति विनोद ठाकुर जी या हरिभक्त विलास में बहुत सी ऐसी बातें हैं जो लिखा था किंतु प्रचार नहीं हुआ और उन्हें समाज के अध्यक्ष ने किया, भक्ति श्रील परम्पार ने क्या किया समाज को एकदम माना नहीं, समाज को ही उन्होंने बदलने की चेष्टा की और बदल दिया। इसलिए उन्होंने बदलाया, देखो ये हरि भक्ति विलास में हमारे समस्त शास्त्रों में हमारे पंचरात्र इत्यादि विधियों में ऐसा है कोई भी व्यक्ति यहां तक कि स्त्री और शूद्र भी यदि वैष्णवी दीक्षा ग्रहण करेगा तो उसका पूजन कर सकता है और ब्राह्मण कुल में जन्म लेने पर भी वैष्णव दीक्षा नहीं हो तो पूजन नहीं कर सकता, समाज में चार इसका। शूद्र लोग यदि ब्राह्मण दीक्षा लेंगे तो वो लोग जनेऊ नहीं धारण कर सकते थे प्रभुपाद के पहले, समर्थ नहीं थी किसी में ये कारण, इसलिए बाबा जी लोग बिना जनेऊ के रहते थे अभी भी। और वो लोग गायत्री मंत्र के जपने का अधिकारी नहीं है, नहीं करते, कर नहीं सकते बिना उपवीत के। इन्होंने कहा कि शूद्र हो मुसलमान हो यहां तक कि गोमांस खादन करने वाले अंग्रेज लोग हो अमेरिकन हो कोई भी हो किसी जाति का भी व्यक्ति हो वैष्णव में दीक्षा लेने पर स्त्रियां भी सालक नाम शिला का पूजन कर सकती और जनेऊ दे करके दिखला दिया समाज में और समाज में बड़ा भारी तूफान उठा, उनकी शादी बंद कर गई, पानी बंद कर दिया, हुक्का बंद कर दिया, सब कुछ कर दिया। सभी प्रभुपाद के जो शिष्य थे ऐसे प्रभुपाद जैसे ही कि समाज को उन्होंने कहा समाज ध्वंस हो ऐसा समाज ध्वंस। एक प्रभुपाद जी के शिष्य सनातन प्रभु जी थे, उनकी लड़की की शादी के अधीन था, बारात आने वाली थी, किंतु जब उन्होंने सुना समाज वालों ने आई ये तो नीच जाति का हो करके ब्राह्मण नहीं है तभी जनेऊ दे दिया वैश्य हो करके भी, पर तो उसका पानी डाली बंद कर दिया, भोजन बंद कर दिया समाज में और उसकी लड़की की शादी को बारात आने वाली है बंद कर दिया। सनातन गोस्वामी जी सनातन प्रभु जी फल और मिठाई जो नष्ट होने वाली चीज थी सारी चीजों को लेकर के बाग बाजार गौड़िया मठ में गए और ब्रह्मचारियों को और वैष्णवों को बांट दिया सबको। वो लोग बड़े प्रसन्न हो कि आज सनातन प्रभु आज मिठाई और आम और फल मूल लेकर के आए हैं, बड़े उदार हैं। वो ऐसा पहले भी करते थे कि उस दिन अधिक लेकर के गए, गाड़ी में भर करके ले गए और सबको बांटा। पीछे से प्रभुपाद को पता लगा कि इसकी लड़की की शादी को बंद कर दिया इसलिए इसने जनेऊ धारण किया और गायत्री मंत्र करता है और गोपाल मंत्र करता है, काम गायत्री करता है, जाति का क्या है वैश्य है, उनको लेने का अधिकार नहीं है। अच्छा ऐसी बात, तांती जानते हैं आप लोग कपड़े बुनते हैं, उस जाति में वो आए बस बंद कर दिया गांव समाज ने साथ। तो प्रभुपाद ने सुना अरे एकदम आंख लाल हो गई, ऐसा समाज ध्वंस हो ध्वंस हो और ध्वंस, कुछ दिनों के बाद भी ऐसा समाज ध्वंस हो गया। मन एक महाराज थे नेमी महाराज, उन्होंने जब वो सुने बोले कि लड़की की शादी नहीं होती अभी मर करके मैं और फिर जन्म कहीं लेकर के उस लड़की के साथ में मैं शादी करूंगा, ऐसे ऐसे उत्पात हुए कहां कहां क्या तो इस तरह से प्रभुपाद ने ये समाज गढ़ा, उनका फल है। आज आप लोग ये सब कथा सुन रहे हैं, जनेऊ पहन रहे हैं, स्त्रियां आजकल अर्चन करती हैं ठाकुर जी की और सालग्राम की, उनका कारण से मूर्तियों की तो पूजा करेंगे किंतु सालग्राम जो है इसकी पूजा नहीं कर रहे, ये पूर्ण परंपरा है। और मूर्तियां क्या है तो जयपुर से और उधर से गठित हुई है, उनकी प्राण प्रतिष्ठा होती है ये सालग्राम से, इसे ये सबसे उन्होंने ऐसे समाज को ध्वंस करके ऐसा समाज बनाया आज विश्व में सर्वस्व ये सब चीजें है, इसलिए उन्होंने। किंतु ये मूल नहीं है, स्त्रियां सारा ग्राम पूजन करती हैं और नीच जातियों के लोगों को भी वैष्णवी दीक्षा देकर के उपनयन दिया जाता है, ये मूल चीज नहीं है। मूल चीज क्या है? भजन राधा, ना हम विप्रो न च नरपति ना उपैक्षो न शूद्र ना अहम वर्णी गृहपत्र नो बल सो वाद कृपा किंतु प्रज्ञान निखिल परमानंद पूर्णान प्राप्त गोपी भर्तु पद कमल योगदाय। ये चीज मुख्य है, ये चीज ठीक है तो सत्य। इसलिए प्रभुपाद का विचार था, प्रचार का ये मूल चीज था, इसलिए ऐसा किया। जब प्रभुपाद जी पहले आए वृंदावन में तो उनको मंदिरों में घुसने नहीं दिया और उनके सेवकों को ये याद रखना, कहा कि ये दूसरों को जनेऊ देता है इसलिए घुसने नहीं दिया, कहा ये विधर्मी है। ब्राह्मण केवल जगहों पर भी चलेगा या क्षत्रिय विशेष रूप में, और ये कहता है कि सबको उपनयन देता है, स्त्रियों से सालग्राम की पूजा कराता है, उनको भी दीक्षा देकर कहता कि ये भी ब्राह्मण है, इसे सभी उनके ऊपर। किंतु जब प्रचार को जब आरंभ हुआ उनमें से एक ब्रह्मचारी दो ब्रह्मचारी हयग्रीव ब्रह्मचारी और नंदसुनु ब्रह्मचारी दुबले पतले और एक मोटे लंबे शौर बनारस में गए, उसमें भारतवर्ष के संस्कृत के सबसे बड़े विद्वान क्या नाम था वो वहां पर हिंदू विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग के सबसे बड़े प्रधान थे, उनके घर गए दोनों भिक्षा के लिए, भिक्षा उद्देश्य नहीं था और वो प्रभुपाद का विरोधी था तो उनके घर में गए। उस समय वो आंशिक संध्या कर रहे थे, तो जब कर रहे थे तो वहां पर ये दोनों पहुंचे तो उनकी पत्नी ने उनको बतलाया कि दो ब्रह्मचारी लाल कपड़े में यहां पर भव्य कपड़े में आपसे मिलना चाहते हैं, कहे अच्छे बैठाओ। तो बैठाया, जब उनका पूजा समाप्त हो गया तो जब वो मिले तो बोले कि कहां से आए हो, कहां से आया है, उपेक्षा कर। बूढ़े थे भी विद्वान की थे, उनके लड़के के बराबर थी ये लोग नहीं। उन्होंने कहा कि हम लोग मायापुर से आए। और मायापुर से आए हो जो शूद्रों को भी दो मातरों को भी विदेशियों को भी जनेऊ देता है उसके यहां से आया है? तो इन्होंने कहा मायापुर से हम आए हैं जो कि शूद्रों को भी स्त्रियों को भी दूसरे लोगों को भी ब्रह्म तत्व दे करके उन्हें यथार्थ रूप में ब्राह्मण बनाता हूं, वहां से हम लोग आए हैं। और फिर साक्षात छन गई, कहां इतना प्रकांड विद्वान, कहां ये बच्चे, मैंने भागवत में रामायण में गीता में कहां दिखाया रहता ये दूसरे जाति के लोग जन्म पढ़ेंगे, जैसे आपको आंख नहीं है पढ़ने का, गीता में नहीं पढ़ा चतुर्वर्ण मया सिस्टम गुण कर्म विवाद, और भागवत में नहीं पढ़ा जस्य जल लखनम पुंसु वर्णा विभंजकम जदर नास्ति दृश्यते तत्ते न उपजत, इसका अर्थ आप बतलाइए। तो जब ये श्लोक ये सब बोलना धड़ाधड़ आरंभ किया उस समय कांपने लगा उसके शरीर में, पसीने छूटने लगे, कांपने गिरने लगा, उत्तर नहीं देता, वजह से इसका उत्तर बतलाओ, इसका अर्थ बतलाओ, तो बतला नहीं सका। इतना बड़ा भारी विद्वान जो उसको भारत के पद्म भूषण उसको उपाधि मिली थी राष्ट्रपति से, किंतु थक थक करके काम से फिर बैठ गया। उसकी पत्नी ने कहा कि भाई आप लोग जाइए चाहिए मत जाएंगे, सब समझे जैसे गौड़ियों वैष्णव क्या था, ये प्रभुपाद की कितनी बड़ी है। किंतु ये प्रचार क्या था भैरव, ये इसको समझो, ये प्रचार का मूल उद्देश्य नहीं था। इनका प्रचार का उद्देश्य क्या था? ओ हरिनाम संकीर्तन जो परम विजय थे श्री कृष्ण संकीर्तन ये, और उनके जो विचार थे रूप गोस्वामी का विचार, यही उनका प्रचार का ये सब। इन्हें दोनों में सामंजस्य करके हम लोगों को चलना होगा। और इस विषय में भी जैसे हमारे अभी रसानंद जी ने कुछ कहा, मैं उसका अनुमोदन नहीं करता। अभी जो कहा ना, गुरु जी रहते तो बिगड़ जाते सुन करके। वो क्या बतलाया ना कि उनका पूर्व जन्म का
वो अच्छा
ना ना, वो नहीं, वो तो ठीक है, वो सब ठीक है। शाजियाबाद जैसा कुछ बतलाया, ऐसा ऐसा मत बोलना। वो सब या प्रभुपाद मंजरी है, ये सब साधारण सभा में ये सब मत बोलना, ये सब से ज्यादा सावधान रहना, ये सब अधिक बोलने की जरूरत नहीं। और सभा के अनुसार में विशेष अंतरंग देखनी हो तो ये सब बातें होनी चाहिए, और नहीं तो ये उल्टा फल प्रसार कर। तो इस विषय में तुम लोग सावधान रहो। सदा शब्दों में तत्व ज्ञान और भक्ति के कुछ लुका छिपा करके उस भक्ति को गंभीरता पूर्वक इसको व्यक्त करना है। उद्देश्य वही है कि तो गंभीरता को देख सुनकर। तो प्रभुपाद जी ने ऐसे एक बच्चे को पढ़ाने के लिए गए, राजकुमार को पढ़ाने के लिए, ही वेंट टू टीच एनी किंग सन। और वहां पर गए तो पढ़ाया 5-7 दिन 10 दिन, और वैष्णव पढ़ाने का फल क्या हुआ, उसमें वैराग्य आने लगा, राजकीय द्वेष छोड़ दिया और साधु बनने लग गया। तो उसकी मैया ने कहा उससे, राजा से ये से इसको हटाइए, नहीं तो मैं प्राण खा करके जहर खा करके मर जाऊंगी। हमारा एक ही लड़का है, ये राजा होकर के राज्य चलाएगा, आखिर साधु बनेगा, साधुओं को पैसा दे दिया खत्म, बस इतने ही तक संबंध। ये तो कुछ दिनों में इसको बराज बना देगा, ये साधु सन्यासी बन करके चला जाएगा। तो भक्ति उन्होंने राजा ने इनसे कहा, मैं तुमको वही पूरा महीना दूंगा न पढ़ने का पैसा। तो उन्होंने पैसा नहीं लिया, छोड़ दिया, चले आए। और फिर मायापुर में रह करके भक्ति विनोद ठाकुर ने मायापुर में रहने का आदेश दिया। उसमें मायापुर जंगल और वही मुसलमानों से भरा पड़ा था, और उस समय में घाट फूल की मड़ई बनाकर महाप्रभु और विष्णुप्रिया जी गौ गदाधर और पंचतत्व की वहां पर स्थापना करके भक्ति विनोद ठाकुर जी ने इनके नाम से जमींदारी खरीद करके दे दी। और तुम कर, उन्होंने पहली बार जब नवदीप परिक्रमा का आरंभ किया, उसके पहले भक्ति विनोद ठाकुर ने बहुत लिखा है किंतु आरंभ नहीं किया परिक्रमा। प्रभुपाद जी ने सबसे पहली बार 100-150 आदमियों को लेकर के ब्रजमंडल नवदीप धाम की परिक्रमा। उस समय में जितने भी कीर्तन करने वाले दूसरे संप्रदाय के भी व्यक्ति थे उनको भी बुलाया, और वहां पर रास भी कराया। रास मैंने बंगाल में क्या होता है, यात्रा, जिसे लोग सब आए, जाता थिएटर जैसा, और उसमें लोग आए, कीर्तन करवाया, अखंड कीर्तन, दूसरे संप्रदाय के लोगों को बुलाकर, और उसमें किया कि आज भाषण देने का अपना समय रखा, और उस भाषण में शुद्ध भक्ति की बातें, ये सब क्या क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, ये सब धीरे 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 इन सब लोगों को हटा दिया। और फिर अब जैसा चल रहा है परिक्रमा का स्वरूप, अब ऐसे चलने लग गया। बीच में ये सब कुछ लड़खा आ गया था, फिर हमारे गुरु जी ने फिर इसको संभाल करके ऐसा इस प्रकार से शुद्ध भक्ति का प्रचार किया, किंतु शुद्ध भक्ति का उतना प्रचार नहीं कर सके। शुद्ध भक्ति में रागानुराग तो उसका बीज दे गए, और उसका प्रचार किए चार सकते। इस तरह से प्रभुपाद नहीं आते तो ये सब चीजें खड़ी रह जाती, और विदेशों में भी प्रचार नहीं हो पाता, सारे भारतवर्ष में भी प्रचार नहीं हो पाता, बस ब्राह्मणों की पूंजी बनी रहती है। प्रभुपाद जी का उसके इन विचारों को हम लोग प्रचार करेंगे शुद्ध रूप में, इसका अपने जीवन में हम पालन करेंगे। हमने तो ये नहीं देखा कि प्रभुपाद का समय का कोई सन्यासी एक को छोड़ करके और प्रभुपाद का दिया हुआ सन्यासी आज तक कोई नहीं दिया, अपने से दिया है अनंत वासुदेव जी, अपने ने लिया और वो गिरे। इसका सिर्फ तो कोई प्रभुपाद का दिया हुआ सन्यासी में से देखो एक भी व्यक्ति नहीं गिरा है और जगत से सब ग्रहस्थ उन्होंने प्रचार किया। यहां तक कि उनका दीक्षित व्यक्ति भी ब्रह्मचारी भी शादी विवाह नहीं किया, जो नैतिक ब्रह्मचारी लाल कपड़े थे वो भी नहीं, वो एक जो बाग बाजार के कुछ आ गए संपर्क में, इसका सिर्फ कोई नहीं। इस तरह प्रभुपाद का ये प्रचार ऐसा भक्ति आता उनमें सब, तो हम लोग भी ऐसे ही रहे, उसी प्रकार से हम लोग भजन करें खुद और प्रचार करें, वैष्णवों की सेवा करें जैसा प्रभुपाद का विचार है। ये उनके चरणों में सच्ची पुष्पांजलि होगी। अभी हम लोग उनका अर्चन करके और उनके चरणों में पुष्पांजलि दान करेंगे और प्रसाद पान करके विश्राम करेंगे। विश्राम को आप लोग सभी बैठेंगे, मैं फिर से चिकित्सा के लिए मुझे जाना है दिल्ली, आज मुझे जाना पड़ेगा, मैं कल परसों तक, कल या परसों मैं लौट आऊंगा। फिर हम लोग 500 तारीख तक यहाँ रहेंगे, हरी कथा होगी और आप लोग इसी प्रकार से रहेंगे। गौ प्रमाण रामचंद्र भी चल स्वाद आइए इसको।